एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आज हम एक ऐसे कहानीकार के अनोखे संसार में चल रहे हैं जिनकी कलम से निकले शब्द हकीकत और जादू के बीच की सरहद को जैसे मिटाई देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां तितलियों के झुंड किसी के प्यार में साथ उड़ते हैं, या जहां मौत भी पहले से बताकर आती है।
वाह।
जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलंबिया के महान लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केस की, जिन्हें दुनिया प्यार से गाबो कहती है।
बिल्कुल, गैब्रियल होजे दे ला कॉनकॉर्डिया गार्सिया मार्केस, पूरा नाम तो ये था उनका, 1927 से 2014 तक। और हाँ, वो सिर्फ एक उपन्यासकार या पत्रकार नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
वो तो लैटिन अमेरिका की आत्मा की आवाज बन गए थे, एक सांस्कृतिक प्रतीक।
सही कहा, और 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला उन्हें।
हाँ, और जादुई यथार्थवाद, जिसे मैजिकल रियलिज्म कहते हैं, उसके शायद सबसे बड़े जादूगर। उनकी कहानियों ने न सिर्फ लैटिन अमेरिका को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी, बल्कि कहानी कहने के फन को ही मतलब पूरी तरह बदल दिया।
तो आज हमारे पास जो स्रोत है, उनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि गाबो के जीवन को, उनके जमाने को और उनकी उस अनोखी शैली को गहराई से समझें।
हाँ, वो शैली जिसने हकीकत को कल्पना से भी ज्यादा हैरतअंगेज बना दिया।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। गाबो का दौर मतलब 20वीं सदी का मध्य, ये लैटिन अमेरिका के लिए काफी उथल पुथल वाला समय था, है ना?
हाँ, बेहद, बहुत तूफानी दौर था वो। आप सोचिए, एक तरफ तो कोल्ड वॉर का वैश्विक तनाव चल रहा था।
हाँ, उसका असर तो सब जगह था।
बिल्कुल, और लैटिन अमेरिका पर तो बहुत गहरा पड़ रहा था। दूसरी तरफ क्यूबा क्रांति हुई 1959 में, उसने जैसे बदलाव की एक उम्मीद जगाई,
एक प्रतीक बन गई थी वो क्रांति।
हाँ, लेकिन इसी के साथ साथ कई देशों में सैन्य तानाशाही भी थी, सेंसरशिप थी, राजनीतिक अस्थिरता, माहौल बहुत अजीब था। और इसी उथल पुथल और कह सकते हैं रचनात्मक ऊर्जा के बीच लैटिन अमेरिकी साहित्य का बूम हुआ।
हाँ, बूम, ये शब्द इस्तेमाल होता है, एक साहित्यिक विस्फोट जैसा।
बिल्कुल, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।
और गाबो इस बूम के, कह सकते हैं, बिल्कुल केंद्र में थे अपने समकालीनों के साथ।
सही कहा, मारियो वर्गास ल्योसा थे पेरू से, जूलियो कॉर्टाजार अर्जेंटीना से, कार्लोस फ्वेंटेस मेक्सिको से, कई बड़े नाम उस दौर में लिख रहे थे। और इन सबने मिलकर लैटिन अमेरिकी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी, उसे एक ग्लोबल मंच पर स्थापित किया।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनकी कहानियां सिर्फ उनके इलाके की नहीं है।
बिल्कुल,
उनमें गहरा सार्वभौमिक मानवीय अनुभव छिपा है,
ये बात उन्होंने साबित की।
अच्छा, अगर बाहरी साहित्यिक प्रभावों की बात करें तो गाबो किनसे प्रेरित थे, मतलब उन्होंने किससे पढ़ा, किससे सीखा?
देखिए, उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी आधुनिकतावादियों को तो खूब पढ़ा था।
yeah.
जैसे वर्जीनिया वुल्फ।
अच्छा।
हाँ, उनके जो पात्रों के मन में उतरने की कला थी। फिर विलियम फॉकनर, उनका वो जटिल स्टाइल, लंबे वाक्य, समय के साथ खेलना।
फॉकनर का प्रभाव तो बहुत माना जाता है उनका।
हाँ, माना जाता है। और फ्रांस काफ्का भी, उनकी वो अजीब सी, बेतुकी मगर तर्कपूर्ण दुनिया, इन सब का असर था उन पर।
लेकिन कमाल ये था कि उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की।
नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो कमाल था। उन्होंने इन सारे प्रभावों को लिया, लेकिन उन्हें अपनी जमीन की मिट्टी से, अपनी जड़ों की कहानियों से, अपने कैरिबियन माहौल के मिथकों और अंधविश्वासों से गूंथ दिया
और कुछ बिल्कुल नया बना दिया।
हाँ, एक बिल्कुल नई उनकी अपनी शैली ईजाद की।
और ये जो शैली है, कहते हैं इसकी जड़ें उनके बचपन में थी, वो अराकाटा में नाना नानी के पास जो वक्त गुजरा।
हाँ हाँ, ये उनके लेखन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब कुंजी है एक तरह से। बचपन के जो शुरुआती साल थे वो इराकाटका में नाना कर्नल निकोलस रिकार्डो मार्केस मेजिया।
कर्नल थे उनके नाना।
हाँ, और नानी ट्रैंक्वलीना इग्वारन कोट्स उनके साथ गुजरे। नाना जो थे वो थाउजेंड डेज वॉर के अनुभवी थे।
अच्छा।
एक यथार्थवादी लिबरल सोच के आदमी थे। उन्होंने गाबो को कोलंबिया के गृह युद्ध की, राजनीतिक संघर्षों की, इज्जत और हार की सच्ची कहानियां सुनाई।
और उनके जन्म के आसपास ही वो बनाना मैसेकर वाली घटना भी हुई थी ना?
हाँ बिल्कुल, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की हड़ताल और 1928 का वो बनाना नरसंहार, ये सब बातें उनके जहन पर नक्श हो गईं और बाद में उनके सबसे मशहूर उपन्यास 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की जमीन बनी।
तो नाना से मिली यथार्थ की, इतिहास की ठोस जमीन, और नानी, उनका क्या रोल था?
नानी उस दूसरी दुनिया की चाबी थी। वो दुनिया जहाँ यथार्थ और जादू घुल मिल जाते हैं।
अच्छा,
वो परिवार की मिथकों की, लोक कथाओं की, अंधविश्वासों की, भूतों प्रेतों की बातें ऐसे सुनाती थी जैसे ये रोज की मामूली घटनाएं हों।
मतलब उनके लिए ये सब नॉर्मल था।
हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। उनके लिए तो मरे हुए रिश्तेदार भी घर के सदस्य की तरह ही मौजूद रहते थे। तो यही वो अद्भुत संगम था, नाना का सख्त यथार्थवाद और नानी का वो सहज जादुई संसार। इसी ने गार्सिया मार्केस के जादुई यथार्थवाद की नींव रखी। उन्होंने वहीं से सीखा कि सबसे अविश्वसनीय बात को भी अगर सपाट चेहरे से, मतलब बिना किसी हैरानी के कहा जाए,
तो वो सच लगने लगती है।
हाँ, सच लगने लगती है।
कमाल है, ये विरोधाभास ही उनकी शैली बन गया। अच्छा, फिर उनकी फॉर्मल पढ़ाई और पत्रकारिता की तरफ कैसे गए वो?
नाना की मृत्यु के बाद उन्हें माता पिता के पास जाना पड़ा, फिर बोगोटा के पास ज़िपकेरा में एक बोर्डिंग स्कूल भेज लिया गया।
घर से दूर?
हाँ, और वो कैरिबियन तट की धूप और गर्माहट से दूर, पहाड़ों का ठंडा माहौल। वहाँ उन्हें एक तरह के अटेलेपन, एक स्थापन का एहसास हुआ, जो उनके किरदारों में भी झलकता है बाद में। पिता तो चाहते थे कि वो वकील बने, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में लॉ की पढ़ाई शुरू की, पर मन कहाँ लगता था क्लासरूम में।
कहाँ लगता था फिर?
दोस्तों के साथ कैफे में, साहित्यिक बहसों में, अखबारों के दफ्तरों में। और जब उन्होंने काफ्का को पढ़ा, तब उन्हें लगा कि अरे, साहित्य में ऐसा भी कुछ किया जा सकता है,
एक नई राह दिखी।
हाँ, फिर 1948 में बोगोटा में दंगे हुए, बोगोटाजो जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो गई और बस उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता में आ गए।
और पत्रकारिता का जो अनुभव था वो उनके उपन्यासों के लिए कितना जरूरी साबित हुआ?
ओ, बेहद जरूरी। एल एस्पेक्टाडोर जैसे बड़े अखबारों के लिए उन्होंने काम किया। वहाँ उन्होंने सीखा कि तथ्यों को बारीकी से कैसे देखना है, कहानी कैसे गढ़नी है और भाषा, बिल्कुल सटीक सपाट भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है।
वो रिपोर्टर वाली नज़र।
बिल्कुल। फिर 1950s में वो यूरोप गए संवाददाता बनकर, पेरिस, रोम, वहाँ उन्होंने गरीबी भी देखी। और इसी दौरान उनकी शुरुआती रचनाएँ आईं जैसे लीव स्टॉर्म, लाहो जरास का 1955 में।
मैकोंडो का जिक्र पहली बार इसी में था।
हाँ, मैकोंडो की पहली झलक। और 1961 में नो वन राइट्स टू द कर्नल, एल कोरोनेल नो तियेने क्यान ले एस्क्रीबा। इनमें फॉकनर का असर बिकता है, पर उनके अपने काल्पनिक कस्बे मैकोंडो की हार्ट भी साफ सुनाई देती है।
तो ये जो पत्रकार की नजर और कहानीकार की कल्पना का मेल है, यही उनके लेखन की जान है, कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं, यही उनका USP है।
तो अब आते हैं उनके सबसे बड़े साहित्यिक योगदान पर, जादुई यथार्थवाद। आपने बताया कि जड़ें तो बचपन में थी नानी की कहानियों में, लेकिन ये सिर्फ कल्पना की उड़ान तो नहीं है, कुछ और है इसमें।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है। जैसा मैंने कहा, उन्होंने शायद ये शब्द गढ़ा नहीं, पर इसे पॉपुलराइज जरूर किया, इसे परिभाषित किया। ये असल में यथार्थ को देखने और बयान करने का एक अलग नजरिया है, एक ऐसा नजरिया जहाँ तर्क, अतर्क, सच और सपना, इतिहास और मिथक सब एक साथ चलते हैं,
बिना किसी टकराव के।
हाँ, बिना किसी टकराव के। ये उस कैरेबियन या लैटिन अमेरिकी विश्व दृष्टि को पकड़ता है जहाँ लोगों के लिए चमत्कारी घटनाएं जिंदगी का हिस्सा होती हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, वो बस होती हैं।
और लिखने का अंदाज, वो जो सपाट लहजा है जिसे अंग्रेजी में डेड पैन टोन कहते हैं।
हाँ हाँ, वही तो उनकी खासियत थी। मतलब कोई लड़की चादर समेत आसमान में उड़ जाए या सालों तक पीले फूलों की बारिश हो, वैसे ऐसे लिखते थे जैसे ये कोई
रोज की बात हो।
हाँ, जैसे सब्जी खरीदने जाने जैसी बात हो। इससे होता क्या है कि पाठक उस घटना की अविश्वसनीयता पर अटकता नहीं, वो उसे उस दुनिया की सच्चाई मानकर आगे बढ़ जाता है।
कमाल का तरीका है ये तो।
हाँ, और ये तरीका ना सिर्फ एक खास सांस्कृतिक नजरिए को दिखाता है, बल्कि उन अनुभवों को बयान करने की भाषा देता है जो शायद सीधे सपाट यथार्थवाद से पकड़ में ही ना आते हों।
उनके लेखन में समय का इस्तेमाल भी बहुत अलग है। मतलब इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता उनकी कहानियों में।
सही कहा। चक्रीय समय यानी साइक्लिकल टाइम का इस्तेमाल उनकी एक और बड़ी पहचान है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि इतिहास खुद को दोहराता है, अक्सर दुखद रूप से। एक पीढ़ी की गलतियां, उनकी हसरतें, उनके श्राप, वो अगली पीढ़ी तक जाते हैं, कुछ बदलता नहीं है आसानी से।
एक चक्रव्यूह जैसा।
हाँ, कुछ वैसा ही। और उनका बनाया वो काल्पनिक कस्बा मैकेंडो, जो लीव स्टॉर्म में पहली बार देखा और फिर 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में अमर हो गया।
हाँ, मैकेंडो,
वो फॉकनर के योकना पाटावाफा काउंटी की तरह साहित्य का एक महान संसार है। और वो सिर्फ एक कस्बा नहीं है, वो कोलंबिया का और शायद पूरे लैटिन अमेरिका का एक रूपक बन गया, जहाँ इतिहास एक पहिए की तरह घूमता रहता है।
तो जादुई यथार्थवाद, चक्रीय समय और वो पत्रकारिता वाली सटीकता, इन सब से मिलकर उनका वो अनूठा संसार बना। चलिए अब उनकी कुछ कालजयी रचनाओं की बात करते हैं। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड से पहले भी उन्होंने लिखा था, जैसा आपने बताया।
हाँ, लीव स्टॉर्म 1955 जरूरी है, क्योंकि इसमें मकुंडो पहली बार नजर आता है, और कहानी कहने का वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव वाला तरीका भी। फिर नो वन राइट्स टू द कर्नल 1961 है।
हाँ, कर्नल वाली कहानी
वो संयमित यथार्थवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बूढ़ा भुला दिया गया कर्नल है जो अपनी पेंशन के लिए बरसों से हर शुक्रवार डाकघर के चक्कर लगा रहा है। हाँ, ये धैर्य की, गरिमा की और सरकारी उपेक्षा की बहुत ही मार्मिक, दिल छू लेने वाली कहानी है।
और फिर आई वो किताब जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड 1967,
100 साल का एकांत। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक साहित्यिक घटना थी, भूचाल था एक तरह का।
हाँ, कहते हैं इसका आइडिया उन्हें अचानक आया था गाड़ी चलाते हुए।
हाँ, कहानी मशहूर है। 1965 में मेक्सिको सिटी से अकापुल्को जा रहे थे अपनी पत्नी मर्सिडीज के साथ, और अचानक उन्हें इसका पहला वाक्य, वो कर्नल ऑरेलियानो बुइंदिया वाला और पूरी कहानी का खाका दिमाग में कौंधा।
अच्छा,
कहते हैं उन्होंने गाड़ी रोकी, यू टर्न लिया, घर वापस आए और अगले 18 महीने लगभग कमरे में बंद रहकर इसे लिखा।
18 महीने?
हाँ, और इस दौरान उनकी पत्नी मर्सिडीज बारचा ने सब कुछ संभाला, घर चलाया, उधार लिया, यहां तक कि जरूरत का सामान बेचकर भी उन्हें लिखने का माहौल दिया। ये समर्पण भी उस कहानी का हिस्सा है।
वाकई, और कहानी खुद में एक महाकाव्य है।
बिल्कुल, बुइंदिया परिवार की 7 पीढ़ियों की कहानी है ये। मकाउंडो कस्बे के उठने और गिरने की कहानी। इसमें इतिहास है, मिथक है, प्यार है, युद्ध है, अकेलापन है, महत्वाकांक्षा है, क्या नहीं है।
वो उड़ती हुई कालीने, पीली तितलियां।
हाँ, उड़ती कालीने, भविष्यवाणी करने वाली वो पागामेंट्स, नींद ना आने की महामारी, सालों तक चलने वाली बारिश, केले कंपनी का आना और फिर वो नरसंहार, सब कुछ है इसमें। इसने जादुई यथार्थवाद को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया और गार्सिया मार्केस को विश्व साहित्य के पटल पर हमेशा के लिए अमर कर दिया।
इस शिखर के बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा। कुछ और प्रमुख कृतियां कौन सी हैं?
हाँ बिल्कुल, जैसे 1975 में आई द ऑटम ऑफ द पेट्रियार्क, एल ओतोनियो दिल पात्रियार्का। ये एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नॉवल है।
किस बारे में है ये?
ये एक काल्पनिक, मतलब अनंत काल तक जीने वाले तानाशाह के जरिए सत्ता के मनोविज्ञान को और उसके चरम अकेलेपन को दिखाता है। इसकी भाषा बहुत जटिल है, वाक्य बहुत लंबे, सांस रोक देने वाले।
अच्छा, ये अलग तरह का काम था।
हाँ, बहुत अलग। फिर 1981 में आई क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फुटोल्ड, क्रॉनिका डी उना मुएर्ते अनुंसियादा।
हाँ, ये भी बहुत मशहूर है।
ये एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। एक ऑनर किलिंग की कहानी है जिसके बारे में पूरे कस्बे को पहले से पता था, फिर भी उसे रोका नहीं गया।
ओफ, ये तो डरावना है।
हाँ, और इसकी शैली बिल्कुल पत्रकारिता जैसी कसी भी है। ये नियति, सामाजिक जिम्मेदारी, सामूहिक अपराध बोध, इन सब सवालों को उठाती है।
और एक उपन्यास जो शायद उनके सबसे रोमानी कामों में गिना जाता है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा 1985।
हैजे के लियनों में प्यार,
एल अमोर इन लोस टेम्पोस दिल कोलेरा।
हाँ, ये उनके अपने माता पिता की प्रेम कहानी से प्रेरित बताई जाती है।
अच्छा।
हाँ, ये फ्लोरेंटिनो अरीजा और फर्मीना डाजा की 50 साल से भी ज्यादा लंबी इंतजार वाली प्रेम कहानी है।
50 साल?
हाँ, ये समय के खिलाफ, समाज के खिलाफ, बीमारी और बुढ़ापे के खिलाफ, प्यार के धीरज और जुनून का जश्न है। ये दिखाता है कि गाबो सिर्फ इतिहास और राजनीति के ही नहीं, बल्कि इंसानी दिल की गहराइयों के भी उतने ही माहिर चितेरे थे।
बिल्कुल। अच्छा, जब हम लैटिन अमेरिकी बूम की बात करते हैं तो गार्सिया मार्केस की तुलना उनके समकालीनों जैसे वर्गस लियोसा से कैसे की जा सकती है? मतलब उनमें क्या समानताएं थीं, क्या अंतर थे?
देखिए, ये सभी लेखक एक साझा उद्देश्य से तो जुड़े ही थे कि अपने महाद्वीप की कहानियों को अपनी शर्तों पर, अपनी आवाज में कहना है, दुनिया को बताना है कि हम भी हैं, हमारी भी कहानियां हैं। गार्सिया मार्केज और वर्गस लियोसा में तो पहले गहरी दोस्ती थी, बाद में एक बहुत मशहूर झगड़ा हुआ और प्रतिद्वंदिता भी रही।
हाँ, वो किस्सा भी है। मिलके लैटिन अमेरिकी साहित्य को वो मुकाम दिलाया।
हाँ, बेशक।
विश्व मंच पर स्थापित किया।
हाँ।
आज उनके जाने के बाद गार्सिया मार्केज की विरासत क्या है, मतलब वो आज भी क्यों प्रासंगिक है?
उनकी विरासत, ओ, वो बहुत गहरी और स्थायी है। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ने तो वाकई विश्व साहित्य का नक्शा ही बदल दिया।
कैसे?
इसने न सिर्फ लैटिन अमेरिका को साहित्यिक पहचान दी बल्कि दुनिया भर के उन लेखकों को प्रेरित किया जो अपनी स्थानीय संस्कृतियों, अपने इतिहास, अपने मिथकों में सार्वभौमिक कहानियां तलाश रहे थे, खासकर उन समाजों में जो उपनिवेशवाद से गुजरे थे, यानी पोस्ट कॉलोनियल समाज।
जैसे कि किन लेखकों पर उनका प्रभाव माना जाता है, कोई उदाहरण?
हाँ, कई हैं, जैसे सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन।
हाँ, उसमें भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली कहानी है।
और जादू भी है।
बिल्कुल,
उस पर सॉलिट्यूड का प्रभाव साफ दिखता है। इसी तरह अमेरिका में टोनी मॉरिसन ने बिलवेड में गुलामी की भयावहता को दिखाने के लिए यथार्थ और अलौकिक यानी सुपरनेचुरल तत्वों का इस्तेमाल किया। वो तकनीक भी गार्सिया मार्केस की याद दिलाती है।
तो उन्होंने लिखने के नए रास्ते खोले।
हाँ, उन्होंने ऐतिहासिक आघात पर, राजनीतिक हिंसा पर, स्मृति और विस्मृति जैसे विषयों पर लिखने के लिए नए औजार दिए, नए रास्ते खोले।
और उनके जो विषय थे, क्या वो आज भी मायने रखते हैं?
यकीनन। आप सोचिए, सत्ता का चरित्र कैसा होता है, इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, प्रेम की ताकत क्या है, अकेलेपन का एहसास कैसा होता है, यादों का संघर्ष क्या है, ये विषय तो शाश्वत हैं।
सही बात है।
आज की इस खंडित जटिल दुनिया में शायद ये और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कहानी कहने के जरिए हम अपनी दुनिया को, अपनी सच्चाइयों को बेहतर समझ सकते हैं, चाहे वो सच्चाइयां हमें कितनी भी अजीब क्यों ना लगें।
कल्पना भी सच तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकती है।
बिल्कुल।
उनके कुछ कथन, कुछ कोट्स भी बहुत मशहूर हैं, जो उनके विचारों और उनकी शैली की झलक देते हैं।
हाँ, सबसे यादगार तो शायद 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की वो शुरुआती पंक्ति ही है।
वो कर्नल वाली?
हाँ, बरसों बाद जब कर्नल और इलियानो बोएंडिया फायरिंग दस्ते के सामने खड़े थे, उन्हें वो दूर की दोपहर याद आनी थी जब उनके पिता उन्हें बर्फ दिखाने ले गए थे।
उफ, क्या लाइन है,
है ना? ये एक वाक्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको समेट लेता है, और नियति और स्मृति की जो थीम है वो यहीं से सेट हो जाती है।
और कोई?
अपने नोबल भाषण में उन्होंने लैटिन अमेरिका के अकेलेपन की बात की थी और कहा था कि इसे ऐसी भाषा में बयान करने की कोशिश की गई है जो हमारी अपनी नहीं है। ये अपनी आवाज, अपने नजरिए की तलाश पर बहुत जोर देता है। लेखन के बारे में भी उनका एक दिलचस्प कथन है। वो कहते थे, आखिरकार साहित्य बढ़ेगिरी के अलावा कुछ नहीं है। दोनों में आप वास्तविकता के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसी सामग्री जो लकड़ी जितनी ही सख्त है।
अच्छा, ये तो क्राफ्ट पर जोर देता है।
हाँ, उनके शिल्प के प्रति सम्मान और यथार्थ से उनके गहने जुड़ाव को दिखाता है। भले ही वो जादुई लगता हो, पर वो मानते थे कि वो यथार्थ से ही काम कर रहे हैं।
और कोई यादगार बात जो सोचने पर मजबूर करे?
हाँ, एक ये भी है, ये सच नहीं है कि लोग सपने देखना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो जाते हैं, वे बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे सपने देखना बंद कर देते हैं।
वाओ, क्या बात है,
है ना? ये कल्पना पर, जीवन की ऊर्जा पर और शायद साहित्य के महत्व पर एक बहुत खूबसूरत टिप्पणी है।
वाकई, उनकी बातें भी उनकी कहानियों की तरह ही गहरी हैं। अच्छा, जाते जाते गाबो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद कम लोग जानते हों। हमने उनकी पत्नी मर्सिडीज़ के योगदान का जिक्र तो किया।
हाँ, मर्सिडीज़ का साथ तो उनके जीवन और लेखन दोनों के लिए अमूल्य था, ये बात वो खुद भी मानते थे।
और फिदेल कास्ट्रो से उनकी दोस्ती, वो भी काफी चर्चा में रही।
हाँ, क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो के साथ उनकी दोस्ती हमेशा चर्चा और विवाद का विषय रही, पर गाबो अपनी राजनीतिक सोच पर, अपनी दोस्ती पर कायम रहे।
और उनकी सेहत?
1999 में उन्हें कैंसर का पता चला था, लिम्फैटिक कैंसर, जिसके बाद उन्होंने अपना संस्मरण लिखा, लिविंग टू टेल द टेल, विवीर पारा कोंतारला, जो 2002 में आया। ये उनके शुरुआती जीवन की कहानी है।
अच्छा।
और अपने अंतिम वर्षों में वो स्मृति लोप यानी डिमेंशिया से जूझ रहे थे।
ओह, तो इन सब बातों को अगर समेटें तो गार्सिया मार्केस से हम आज क्या सीख सकते हैं? उनका वो जादू आखिर था क्या?
शायद सबसे बड़ी बात यही है कि उनका जादू असल में यथार्थ को बहुत गहराई से देखने का और उसे ईमानदारी से बयान करने का एक तरीका था। खासकर उन हालात में जहां इतिहास इतना क्रूर रहा हो, राजनीति इतनी जटिल हो, भावनाएं इतनी तीव्र हों कि शायद सीधा सापाट यथार्थवाद पूरी कहानी कह ही ना पाए,
जहां नॉर्मल तरीके से बात करना मुश्किल हो।
हाँ, उनका काम हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृतियों में भी अद्भुत और असाधारण छिपा हो सकता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।
और ये कि मिथक और कल्पना सिर्फ बच्चों की कहानियां या बचकानी बातें नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो सच्चाई को समझने के जरूरी औजार भी हो सकते हैं, गार्सिया मार्केज हमें यही दिखाते हैं कि दुनिया को पूरी तरह समझने के लिए हमें शायद तर्क के साथ साथ कल्पना की, मिथक की, आश्चर्य की भी जरूरत होती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अच्छी कहानियां अक्सर वहीं मिलती हैं जहां हकीकत और जादू मिलते हैं।
गैब्रियल गार्सिया मार्केस के इस जादुई संसार की यात्रा वाकई यादगार रही। उनकी कहानियां हमें सोचने पर, महसूस करने पर और शायद दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए उकसाती हैं।
उम्मीद है इस बातचीत से श्रोताओं को गाबो की दुनिया की एक झलक जरूर मिली होगी, लेकिन उनकी असली जादूगरी तो सच कहूं तो उनकी किताबों के पन्नों में ही महसूस की जा सकती है। उन्हें पढ़ना अपने आप में एक अनुभव है।
बिल्कुल, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए।
समापन उद्घोषणा पहले से रिकॉर्डेड। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।